Hi, this is Vivek, BA Part 2, Faculty of Social Sciences. Now I am going to record the summary of Candida. Act 1. Time. A fine morning in October 1894. We can assume from the play that it was 3rd or 4th October. Place. Country of Hackney. It is in the northeast of London. It is situated on the Hackney Road, which goes from London to Hackney. Its streets are wide and clean. Similar-looking brick houses are made in rows. The place is not attractive. The only attractive place in it is the Victoria Park. It covers an area of 217 acres. It is the center of activity at Hackney. It has a lake for bathers, flower beds, a sand pit for children, cricket pitches, a bandstand, and a platform for social, political, and religious speakers. Pupil. The pupil of Hackney belong to the middle class. Their life is dull and unchanging. They are unfashionable and badly dressed. They move about on their business. They show no interest in others. Scene. The scene of the play is laid in the drawing room of St. Dominic's Parsonage. It is quite close to Victoria Park. Its front window gives the best view of the park. Morel occupies the Parsonage. He is a clergyman. He is in the drawing room. He is sitting in a revolving chair at the end of the long table. He is a well-read man. His tastes and learnings can be judged from the titles of books arranged in the bookshelf. Among them are Progress and Poverty and Marx Capital. He is a Christian socialist. He is a clergyman of the Church of England. He is an active member of the Guild of St. Matthew and the Christian Social Union. He is handsome, energetic, and well-built. He is a popular man of 40. He is a very good speaker. Proserpine is Morel's typist. She is sitting with Morel at the opposite end of the table. She is a sweet woman of 30. She is neatly dressed in cheap clothes. Her manners are not very pleasing, but she is good at heart. The play opens with Morel and Proserpine in the drawing room. Morel is reading letters. Proserpine is typing. The last letter is from the Hoxton Freedom Group. They want him to deliver lecture on Sunday. As a clergyman, he cannot leave his parsonage on that day. He does so only on Mondays and Thursdays. He asks Proserpine if these days are engaged. She tells him that none of these is vacant. On the 28th October, he is invited to dine with the founder's company. Morel foregoes this dinner. Instead, he decides to address the Hoxton group. Lexi, or Reverend Alexander Mill, is Morel's curate. He comes to the drawing room. Proserpine informs him that he will have to do all the work of the parson that day because Morel is going to the railway station. His wife Candida is coming by 11:45 a.m. train. He is very fond of her. To him, the happiness of married life is no less than that of heaven. He advises Lexi to get married. He prepares to leave. Before he goes out, Lexi informs him that the arrival of his father-in-law, Burgess. After Morel has gone out, Proserpine and Lexi begin to talk. She expresses her disgust at Morel's making such a fuss over his wife. She says that by doing so, Morel only makes a fool of himself. In her opinion, Candida is an average woman. Her only beauty is her good hair. Lexi disagrees with Proserpine. He accuses her of being jealous. Proserpine hits back by saying that men are falsely proud of their intellect, so they can never be real judges of women. Women do not share man's infatuation, so they are accused of being jealous. Proserpine realizes the futility of her discussion with Lexi, so she closes it by asking him to go on his rounds. As Lexi goes out, Burgess comes in. He is a man of 60. He is short and fat. He is a contractor. He has made money by paying very low wages to the laborers. He respects the rich and hates the poor. He has come to meet his son-in-law after 3 years. Then he had lost a contract due to Morel. He finds Proserpine in the drawing room. He inquires her about Morel. She goes out to call the Parson. Burgess tells Morel that he has come to make up the old quarrel which had cost him a good contract. He had sent a tender to supply clothing to the workhouse. He would have given the worst wages to the women who had made the clothing. So Morel persuaded the organizers of the workhouse not to grant the tender. For all this, Burgess says that he is ready to forgive Morel. This makes Morel very angry. In order to pacify him, Burgess admits not to employ women. He pays men according to the trade union rates. He had to do all this to get contracts accepted by the country council of Hackney. Morel hears all this. He simply feels disappointed. He asks Burgess the real purpose of his visit. Burgess says that he has come to see Morel only out of love. Morel is not prepared to believe him. Morel wants him to behave as he did in the past. He should be the same scoundrel as he was then. He should not pose himself to be a model employer and a changed man. If all these things are acceptable to Burgess, if he comes as a self-respecting scoundrel, Morel is ready to welcome him. If not, he asks Burgess to leave. Burgess controls his feelings. He does not want to be defeated by Morel. He tries his last weapon of tickling the vanity of the clergyman. He says that times have changed. The idea of socialism preached by Morel are being accepted by people. Burgess is sure that in order to stop Morel from preaching socialism, he will be made a bishop. Morel feels flattered. He promises to introduce Burgess to big parties. If he becomes a bishop, Burgess avails of this opportunity. He asks Morel whether their quarrel has come to an end. Before Morel gives any answer, Candida comes into the drawing room. Morel's wife, Candida, is a woman of 33. She is well-built, healthy, and charming. She is cunning enough to use her attractions to gain her purpose. Morel should have gone to the railway station to receive Candida. He regrets his negligence. He takes her in his arms. He learns from her that Eugene has come with her. Eugene is a strange, shy youth of 18. He is effeminate. He has a delicate and childish voice. His dress is anarchic. He is a poet. Burgess hears the name of Eugene from Candida. He asks her who he is. She informs him as follows. He is one of Morel's discoveries. Morel found him sleeping on the embankment last June. His uncle is a peer. Burgess had mistaken Eugene for some uncultured street boy. Now he changes his opinion. He becomes anxious to be introduced to him. Till now, Eugene was busy in getting down the luggage from the cab. Morel had gone out to call him in. Now he comes into the drawing room with Morel. The clergyman introduces him to Burgess. He invites Eugene to dine at his club. The Freeman founders in Norton Folgate. Eugene thanks him. Burgess leaves for Victoria Park Station. Candida goes inside the house to tidy it up. Morel and Eugene are left alone in the drawing room. Morel asks Eugene to stay for the lunch. Eugene does not want to stay for the lunch because he has been asked by Candida not to do so. Morel insists. He wishes Eugene just to stay to see how happy their married life is. He assures Eugene that their married life is really very happy. Eugene mocks at it. He asks Morel if he really believes it. It is true, Morel is confident. He calls Larouche, you called a liar, who said, there are convenient marriages, but no delightful ones. Eugene asks him to stop this ideal talk. Eugene tells Morel that he had to settle one thing with him. Morel becomes anxious to hear it. Eugene, without the least hesitation, says to him, I love your wife. Morel is surprised. For a moment he is dazed. The next moment he bursts into laughter. He thinks that Eugene loves Candida like others. He says that Eugene's love looks like calf love. The reason is that Eugene is below 20 while Candida is above 30. Candida becomes an apple of discord between Eugene and Morel. Eugene tells him that he has treated his wife like a slave all through these years. He has used her as a means to his pleasure and advantage. Their personalities are so different, not even one thought is common between them. Morel calls him a fool. He thinks that some devil is putting words in his mouth. Eugene assures him that whatever he is saying on purpose. He wants to shock Morel so that he may lose faith in himself. Morel finds himself in a helpless state. He gives up his threatening attitude. He now makes a persuasive approach. He says that Eugene, after his marriage, will be a happy man. He will make every place on earth as happy as his own home. He will be one of the makers of the kingdom of heaven on earth. He has great mental gifts. As he is a poet, he possesses divine qualities. He should use them to give inspired message to people of the world. His words do not produce any effect on Eugene. He asks Morel if he really believes that an intellectual woman like Candida, who seeks reality, truth and freedom, can be happy with his sermons and preaching. He then tells Morel very bluntly that Candida dislikes him. The kindles the rage of Morel. He catches hold of Eugene, but then he leaves the poet and asks him to leave the house. Eugene replies that he is not a coward, though he has no physical courage. He will fight Morel's ideas. He will rescue Candida from them. Eugene wants to go away. Morel wants him to stay so that he may not have to explain to Candida why Eugene went away. Eugene says that Morel must tell her either the truth or a lie. Just when Eugene is leaving, Candida comes in. She deceives him to stay for the lunch. She then asks him to help her to lay the table. While going with her, Eugene says, I am happiest of mortals. Morel replies to it saying, so was I an hour ago. अब हम बात करेंगे इसका हिंदी सारांश, कैंडिडा का सारांश हिंदी में. प्रथम अंक, समय अक्टूबर 1894 की एक सुंदर सुबह. नाटक से हम मान सकते हैं कि तिथि 3 या 4 अक्टूबर है. स्थान हैकनी का विशाल ग्राम्य क्षेत्र. यह लंदन हैकनी मार्ग पर लंदन के उत्तर पूर्व में स्थित है. इसकी गलियां चौड़ी और साफ हैं. समान रूप वाले ईंटों के मकान पंक्तिबद्ध बने हैं, पर स्थान आकर्षक नहीं है. यहाँ का एकमात्र आकर्षण है विक्टोरिया पार्क. 217 एकड़ भूमि पर फैले हुए पार्क में नहाने के लिए एक झील, फूलों की क्यारियां, बच्चों के विनोद हेतु रेतीला क्षेत्र, क्रिकेट के कई पिच, एक बैंड स्टैंड का बड़ा चबूतरा है जहां से धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वक्ता अपने प्रवचन एवं भाषण करते हैं. पात्र हैकनी के निवासी मध्यम वर्ग के हैं, जिनका जीवन रसहीन तथा एक रूप है. उनकी वेशभूषा गंदी है और वे फैशन से अनभिज्ञ हैं. सब अपने अपने कार्य कलापों में दौड़ धूप करते रहते हैं तथा दूसरों के कार्य में उतनी रुचि नहीं है. दृश्य नाटक का दृश्य संत डोमिनिक पुरोहिताश्रम की बैठक है. यह आश्रम विक्टोरिया पार्क के समीप है और उसकी सामने की खिड़कियों से पार्क का सुंदर दृश्य दिखाई देता है. पादरी मोरल इस पुरोहिताश्रम में रहता है. वह बैठक में एक लंबी मेज के किनारे अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है. वह बहुत पढ़ा लिखा है. उसके गुण तथा व्यक्तित्व को उसके रैक में रखी किताबों के शीर्षकों से जाना जा सकता है. उनमें से कुछ के शीर्षक हैं प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी तथा मार्क्स की कैपिटल। 40 वर्षीय मॉरल शरीर से सुडौल, आकर्षक और फुर्तीला है। वह समाजवादी ईसाई चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी, संत मैथ्यू गिल्ड एवं क्रिश्चियन सोशल यूनियन का सक्रिय सदस्य और अच्छा वक्ता है। अपने इन गुणों के फलस्वरूप वह विख्यात व्यक्ति है। 30 वर्षीय प्रोसरपाइन मॉरल की टाइपिस्ट है। वह मॉरल के पास मेज के दूसरे किनारे पर बैठी हुई है। उसने सफाई से सस्ते कपड़े पहने हुए हैं। उसका व्यवहार संतोषजनक नहीं है, परंतु वह दिल से अच्छी है। नाटक के आरंभ में मॉरल तथा प्रोसरपाइन बैठक में बैठे हुए हैं। मॉरल पत्रों को पढ़ रहा है। प्रोसरपाइन टाइप कर रही है। अंतिम पत्र हॉक्सटन फ्रीडम ग्रुप की तरफ से था। वे चाहते थे कि वह मॉरल रविवार को अपना प्रवचन करे। पादरी होने के कारण मॉरल रविवार को पुरोहिताश्रम से बाहर नहीं जा सकता। वह अपने स्थान को सोमवार और बृहस्पतिवार को ही छोड़ता है। वह प्रोसरपाइन से पूछता है कि क्या वह इन दिनों में जा सकता है। वह बताती है कि मॉरल के लिए वह दिन व्यस्त है। 28 अक्टूबर को फाउंडर्स कंपनी ने मॉरल को खाने पर आमंत्रित किया है। मॉरल इस निमंत्रण को त्याग देता है और निर्णय लेता है कि वह उस दिन हॉक्सटन ग्रुप में भाषण देगा। लैक्सी या रेवरेंड अलेक्जेंडर मील मॉरल का सहायक पादरी है। प्रोसरपाइन उसे बताती है कि आज उसे ही पादरी का सारा कार्य संभालना होगा, क्योंकि मॉरल रेलवे स्टेशन जा रहा है। उसकी पत्नी कैंडिडा 11:45 पर सुबह की गाड़ी से आ रही है। वह उसे बहुत चाहता है। इसके लिए वैवाहिक जीवन का सुख स्वर्ग के समान है। वह अपने सहायक लैक्सी को भी शादी करने की सलाह देता है। वह जाने के लिए तैयारियां करता है। इससे पहले कि मॉरल बाहर जाता, लैक्सी उसे खबर देता है कि उसके ससुर श्रीमान बर्गेस आश्रम में पहुंचने ही वाले हैं। मॉरल के बाहर जाने के बाद प्रोसरपाइन और लैक्सी बात करना शुरू करते हैं। मॉरल के अपनी पत्नी के बारे में हर समय तारीफ के पुल बांधते रहने पर प्रोसरपाइन अपनी खीज प्रकट करती है। वह कहती है कि ऐसा करने से मॉरल स्वयं ही अपने आप को मूर्ख बनाता है। उसके अनुसार कैंडिडा सामान्य स्त्री है। उसकी एकमात्र सुंदरता का अंश उसके सुंदर बाल हैं। लैक्सी प्रोसरपाइन से सहमत नहीं होता है। वह प्रोसरपाइन पर कैंडिडा सिरसा करने का आरोप लगाता है। प्रोसरपाइन उसे जवाब देती है कि पुरुष अपने बुद्धि पर झूठा घमंड करते हैं, इसलिए वह कभी भी स्त्रियों के सही न्यायकर्ता नहीं हो सकते। स्त्रियां पुरुषों की प्रेमांधता में साथ नहीं देती हैं, इसलिए वे ईर्ष्या करने के लिए दोषी ठहराई जाती हैं। प्रोसरपाइन लैक्सी से वार्तालाप को निरर्थक समझकर उसे अपना निर्धारित काम आरंभ करने के लिए कहकर चुप हो जाती है। जैसे ही लैक्सी बाहर जाता है, बर्गस अंदर आता है। उसकी आयु 60 वर्ष है। शरीर से वह नाटा और मोटा है। वह एक ठेकेदार है। उसने मजदूरों को कम मेहनताना देकर पैसा बनाया है। वह अमीरों का आदर करता है और गरीबों से घृणा। वह अपने दामाद से 3 साल बाद मिलने आया है। तब उसे अपना एक ठेका मॉरल के कारण खोना पड़ा था। बैठक में प्रोसरपाइन को बैठा देखकर वह उससे मॉरल के बारे में पूछता है। तत्काल प्रोसरपाइन मॉरल को बुलाने के लिए बाहर जाती है। मॉरल के बैठक में आने पर बर्गेस उसे बताता है कि आज वह पुराने मनमुटाव को मिटाने के लिए आया है, जिसके कारण उसे लाभकारी ठेके से हाथ धोना पड़ा था। बर्गेस ने उस समय दरिद्रालय को कपड़ों की आपूर्ति की निविदा भरी थी। कपड़े सीने वाली निर्धन औरतों को कम से कम वेतन देकर वह धन कमाना चाहता था। इसलिए मॉरल ने दरिद्रालय के प्रायोजकों से मिलकर प्रार्थना की कि वह बर्गेस की निविदा यानी कि टेंडर को स्वीकृति न दें। आज बर्गेस कहता है कि वह मॉरल को उसके अनपेक्षित कदम के लिए माफ करने के लिए तैयार है। बर्गेस के इस कथन पर मॉरल क्रोधित हो उठता है। उसके शांत करने के लिए बर्गेस अपनी गलतियां स्वीकारते हुए कहता है कि वह जब एक आदर्श नियोजक है, औरतों को काम पर नहीं रखता तथा पुरुष कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन द्वारा नियत की हुई दरों पर मजदूरी देता है, उसे यह सब परिवर्तन हैकने काउंटी काउंसिल से नए ठेके स्वीकृत करवाने के लिए करने पड़े हैं। मॉरल इन सब बातों को सुनकर निराशा महसूस करता है। वह बर्गेस से उसके आने का असली कारण पूछता है। बर्गेस कहता है कि वह मॉरल के प्रति प्यार से वशीभूत होकर उससे मिलने आया है। मॉरल इस कथन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वह चाहता है कि बर्गेस पूर्ववत दुष्टता का व्यवहार करे और अपने आप को आदर्श नियोजक और भला आदमी बन जाने का ढोंग न रचाए। यदि वह स्वाभिमानी दुष्ट की भांति सच्ची बात बताए तो मॉरल उसका स्वागत करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बर्गेस को वापस चले जाने को कहेगा। इस आवेशपूर्ण उक्ति पर बर्गेस अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि वह मॉरल से हारना नहीं चाहता। वह अपना आखिरी हथियार चलाकर अपने दामाद पादरी के स्वाभिमान को गुदगुदाता है। वह कहता है कि समय के परिवर्तन के साथ मॉरल के समाजवादी उपदेशों को लोग अपना रहे हैं। उसे पूरा विश्वास है कि मॉरल अब बिशप पद पर आसीन हो जाएगा। इस चापलूसी पर मॉरल प्रसन्न होकर बर्गेस से वायदा करता है कि यदि वह बिशप बन जाए तो वह उसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाएगा। बर्गेस इस मौके का फायदा उठाता है। वह मॉरल से पूछता है, क्या उनका मन मुटाव समाप्त हो गया? इससे पहले कि मॉरल खुद जवाब दे, कैंडिडा बैठक में आ जाती है। मॉरल की पत्नी कैंडिडा 33 वर्ष की युवती है। वह स्वस्थ, सुडौल और मोहिनी है। वह इतनी चतुर है कि वह अपने समस्त आकर्षण अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करती है। मॉरल को कैंडिडा के स्वागतार्थ रेलवे स्टेशन जाना था, पर अपने ससुर बर्गेस के घर आ जाने के कारण वह नहीं जा सका। इस लापरवाही के लिए कैंडिडा से माफ़ी मांगते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर उसे पता चलता है कि यूजिन कैंडिडा के साथ आया है। यूजिन 18 वर्षीय सुकुमार शर्मिला किशोर है। उसकी आवाज़ बच्चों के समान कोमल व पतली है। वह एक कवि है और विचित्र दिखता है। उसकी असाधारण वेशभूषा भी उसकी विचित्रता को बढ़ाती है। यूजिन का नाम सुनकर बर्गेस उसके बारे में जानना चाहता है। कैंडिडा बताती है कि यूजिन मॉरल की खोज है। गत जून में मॉरल ने उसे विक्टोरिया तटबंध पर सोते हुए पाया था। यूजिन का अपना चाचा पियर अभिजात वर्ग का पद है। यह सुनकर बर्गेस यूजिन को एक आवारा लड़का समझने की भूल को सुधार लेता है और उसे मिलने के लिए आतुर हो उठता है। अब तक यूजिन सामान को टैक्सी से घर लाने में व्यस्त था। मॉरल उसे अंदर बुलाने के लिए बाहर गया हुआ था। अब वह मॉरल के साथ बैठक में आता है। मॉरल उसे बर्गेस से मिलवाता है। वह यूजिन को अपने साथ फ्रीडम फाउंडर्स नामक क्लब में खाने के लिए आमंत्रित करता है। यूजिन उसे धन्यवाद देता है। बर्गेस विक्टोरिया पार्क के लिए रवाना होता है। घर की सफाई करने के लिए कैंडिडा अंदर जाती है। मॉरल और यूजिन बैठक में अकेले रह जाते हैं। मॉरल यूजिन से लंच के लिए रुकने के लिए कहता है। यूजिन खाने के लिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि उसे कैंडिडा द्वारा ऐसा न करने के लिए कहा गया है। मॉरल जोर देता है, वह चाहता है कि यूजिन ठहरे और देख पाए कि उनका दाम्पत्य जीवन कितना सुखी है। मॉरल यूजिन को आश्वस्त करना चाहता है कि उसका विवाहित जीवन अत्यंत सुखी है। यूजिन मॉरल से पूछता है कि क्या वास्तव में उसका जीवन सुखी है। मॉरल को अपने कथन पर पूरा विश्वास है और वह एक झूठे लेखक लेरोस फोकाल्ड का वाक्य दोहराता है, साधारण शादियां सुविधाजनक होती हैं परंतु आनंदप्रद नहीं। यूजिन उसे अपनी बातें बंद करने को कहता है। यूजिन मॉरल को बताता है कि उसे उससे बात करनी है। मॉरल उसे सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। यूजिन बिना हिचकिचाहट के उससे कहता है, मैं तुम्हारी पत्नी से प्रेम करता हूँ। मॉरल को आश्चर्य होता है। कुछ क्षणों के लिए वह स्तब्ध रह जाता है, फिर वह जोर से हंसने लगता है। वह सोचता है कि यूजिन दूसरों की तरह कैंडिडा को चाहता है। वह कहता है कि यूजिन का प्यार बचकाना और अनुभवहीन है। इसका कारण यह है कि यूजिन अभी 20 वर्ष का भी नहीं है जबकि कैंडिडा की आयु 30 वर्ष से अधिक है। कैंडिडा यूजिन और मॉरल के बीच झगड़े की जड़ बन जाती है। यूजिन मॉरल को बताता है कि उसने अपनी पत्नी को इन वर्षों में गुलाम की तरह से रखा है। उसने इसका प्रयोग अपने लाभों और अपने सुख के लिए किया है। उनके व्यक्तित्व भिन्न भिन्न हैं, उनका एक भी विचार मिलता नहीं है। मॉरल उसे मूर्ख बताता है। मॉरल सोचता है कि शैतान ही यूजिन के मुख में ये शब्द डाल रहा है। यूजिन उसे विश्वास दिलाता है कि जो कुछ वह कह रहा है किसी उद्देश्य के लिए कह रहा है। वह मॉरल को एक मानसिक प्रघात देना चाहता है जिससे वह अपना आत्मविश्वास खो बैठे। मॉरल अपने आप को एक असहाय स्थिति में पाता है। वह अपनी धमकी देने वाली मुद्रा त्याग कर समझाने बुझाने का प्रभावशाली रुख अपनाता है। यूजिन को समझाते हुए वह कहता है, प्रिय तुम अपने विवाह के बाद एक सुखी व्यक्ति होगे। प्रत्येक स्थान को तुम अपने घर के समान सुखी बना दोगे। तुम पृथ्वी पर ही स्वर्ग ला सकोगे। तुम्हारे पास प्रकृति प्रदत्त दिव्य शक्तियां हैं तथा तुम एक कवि हो। तुम्हें उनका प्रयोग विश्व के लोगों को प्रेरणादायक उपदेश देने में करना चाहिए। पर मॉरल के इन प्रशंसात्मक शब्दों का भी यूजिन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह मॉरल से पूछता है कि क्या वह वास्तव में विश्वास करता है कि कैंडिडा जैसी प्रज्ञावान स्त्री जो यथार्थ सच्चाई व स्वतंत्रता की खोजी है उसके प्रवचनों और उपदेशों से सुखी रह सकती है। फिर वह मॉरल को साफ साफ बताता है कि कैंडिडा उसे चाहती नहीं है। यह सुनकर मॉरल को क्रोधाग्नि प्रबल हो उठती है और वह यूजिन को कसकर पकड़ लेता है। तत्पश्चात वह उसे छोड़ देता है और तत्काल घर से निकल जाने के लिए कहता है। यूजिन उत्तर देता है कि वह कायर नहीं है। यद्यपि शारीरिक शक्ति में मॉरल से कम है, वह मॉरल के विचारों का विरोध करेगा और लड़ता रहेगा। वह कैंडिडा को उनसे मुक्त कराएगा। यूजिन बाहर जाना चाहता है। मॉरल चाहता है कि वह रुके जिससे कि उसे कैंडिडा को यह न समझना पड़े कि यूजिन क्यों चला गया। यूजिन कहता है कि मॉरल कैंडिडा से सच या झूठ जो भी चाहे कह दे। जैसे ही यूजिन जाने को था वैसे ही कैंडिडा अंदर आ जाती है। वह उसे लंच के लिए रुकने को कहती है। फिर वह उससे मेज लगाने में उसकी मदद के लिए पूछती है। उसके साथ जाते हुए यूजन कहता है, मैं सभी मनुष्यों में सबसे सुखी हूँ। मॉरल उत्तर देते हुए उसे कहता है, मैं भी 1 घंटे पहले तक इसी प्रकार सुखी था। अब हम अगले नाटक की ओर, Act 2 2nd part। टाइम सेम डे इन द आफ्टरनून, दैट इज इन द आफ्टरनून ऑफ 3rd or 4th October 1894। सीन द सेम रूम, दैट इज द ड्रॉइंग रूम ऑफ सेंट डोमिनिक्स पर्सोनेज। मार्च बैंक्स इज अलोन इन द ड्रॉइंग रूम। He has nothing to do, so he tries to find out how the typewriter works. He hears someone coming, so he goes to the window. He pretends to be absorbed in seeing the scene outside. The person who comes is Proserpine. She starts typing. She finds that the spacing has been changed. Proserpine blames Marchbanks for meddling with the typewriter. He admits this thing and expresses his regret. Proserpine wants to know if he was trying to type a love letter. With this begins the discussion of love affairs. Marchbanks thinks that clever people keep away from love affairs. Proserpine wants to avoid such discussions. She says that she has no love affair. She asks him not to talk about them. Marchbanks tells her that she has no love affair because she is shy. According to him, it is due to shyness that there are so few love affairs in the world. Shyness stands in the way of lovers. They are so shy to express their love. Marchbanks himself is no exception to it. When he tries to ask for love, shyness makes him dumb. In case he speaks something, it is quite foolish and meaningless. He says, all the love in the world is longing to speak, only it dare not because it is shy. On hearing this, Proserpine says that the wicked people are not shy. In reply, Marchbanks says that wicked people have no love and therefore they have no shame. Proserpine does not want to talk further about love and love affairs, so she requests Marchbanks to talk about general things. Marchbanks cannot stop talking about love. He cannot do so because his heart is crying for love. Proserpine hears this. Her feelings of love are greatly stirred. She wants to tell the poet about her love, but she warns him not to speak it to anyone. This makes Marchbanks arrive at the conclusion that she loves. Mr. Mill Proserpine denies it. She would prefer Marchbanks to Mill. Marchbanks tells her not to think of him. She assures him that it is not so. She wants him to talk to Morel. He will find the clergyman superior to him. This makes Marchbanks understand the secret of her love. On being asked by him, she says that she is in love with Morel. She makes no secret of it. This gives a shock to Marchbanks. He covers his face with his hands to show his disgust. Burgess comes. His arrival pleases Proserpine. Now she will not be bored by Marchbanks. Burgess informs Proserpine and Marchbanks that Morel is receiving a deputation in the dining room. He then indirectly tells her that Marchbanks was talking about himself and his love to her. This makes her very angry. She calls him a silly old fellow. Burgess feels much offended. He decides to make a complaint against her to Morel. Marchbanks tries to pacify Burgess. The bell rings for Proserpine. She goes to meet Morel in the drawing room. Burgess and Marchbanks are left alone in the dining room. Burgess tells him in confidence that Morel is called mad only due to his strange opinions. Some time back, Burgess also thought so, but now he He has changed his opinion. Morel does not take it seriously. He says that Proserpine used these words only because she is so frank. He laughs heartily. He advises Burgess not to mind her words. This confirms Burgess in his belief that Morel is mad. He asks Marchbanks to observe Morel's behavior. Burgess decides to wait for the dinner, so he asks Morel to give him a nice book to pass the time. Morel knows that Burgess is not a well-read man, so he gives him a pictorial magazine. Burgess takes it and goes to the fireplace. There he sits on a big chair, reading. Morel informs Marchbanks that Candida will come soon to entertain him. At present she is busy putting paraffin oil in the lamps. Marchbanks is unable to bear the drudgery of Candida's life. He calls it a shameful thing. Her beautiful hands will become dirty. He wants to go to fill the lamps. Morel stops him. Marchbanks wants to know why Morel does not keep a servant to do menial work. In reply, Morel asks him how many servants his father keeps. Marchbanks does not know about it, and so he cannot answer Morel's question. He criticizes Morel for making his wife work like a drudge. He says that while Candida's beautiful fingers are soiled with paraffin oil, Morel sits comfortably preaching. Candida comes with a lamp. She will like to hand over the lamps to Eugene if he stays with them. Marchbanks can stay on the condition that she hands over all the rough work to him. Candida admires his offer of service. She asks him to start with the lamps first. Candida blames Morel. In reply, he says that he experienced horror. Burgess is present in the room. He wonders why Marchbanks should get horrors at this age. Candida satisfies him by saying that it is only poetic horror. Burgess fails to understand what this kind of horror actually means. Candida soothes Eugene. She tells him not to be disturbed because she has to work with the scrubbing brush. She lovingly asks him to present her a scrubbing brush with an ivory back set with mother of pearl. At once he bursts in poetic effusions and expresses his longings for pure and perfect love. He says that instead of a brush, he will offer her a small boat. In this boat, both of them will sail away from the world. They will go to a place where the floors are made of marbles washed by the sun, or he will offer her a chariot. It will carry them up into the sky, where the lamps are the stars, and do not need to be filled with paraffin oil every day. Morel does not like the poetic effusions of Marchbanks. He says that Morel wants to go to a place where there is nothing to do but to be ideal, selfish, and useless. Marchbanks does not contradict him. He says that to be ideal, selfish, and useless is to be beautiful, free, and happy. Every man desires this for the women he loves. Marchbanks is no exception to it. It is his ideal of life. He criticizes Morel for his ideal, which makes him preach and his wife scrub. He means that Morel's ideal of life is unreal and theoretical. Through socialism, he preaches equality, but he does not allow equality to his wife. This talk of Marchbanks makes Morel angry. He has no respect for Marchbanks, but when the poet very frankly and correctly criticizes his ideals of life, he begins to fear him. Proserpine comes. She gives a reply paid telegram to Morel. It has come from the Guild of St. Matthew. In it, he is requested to deliver a lecture. Morel sends the reply that he cannot come. Proserpine informs that onions have come. On hearing it, Candida goes inside the house. She takes the poet with him to help her in slicing them. Burgess does not like the behavior of his daughter. He says that she should not have behaved like that with Marchbanks. By doing so, she has crossed the limits of decency. Morel does not give any reply. He remains silent. Morel goes out to give the telegram to the boy who is waiting for it. Proserpine and Burgess are left alone. She informs him that Marchbanks is mad. On hearing this, Burgess begins to think that he too is mad. He has already told the poet that Morel is mad. So he finds Morel's house to be a strange place. Then he goes to the garden to enjoy smoking. Morel wants to tease Proserpine simply for the sake of fun. So he asks her why she had been calling his father-in-law names. She blushes red with fear. Next moment she bursts into tears. To console her, Morel tells her not to mind what he has said. His words fail to soothe her. She begins to sob loudly. Then she leaves the drawing room. Candida, after finishing her household work, comes into the drawing room. Morel does not pay any heed to her. He remained busy in writing. He cannot hide his feelings from Candida. She finds him sad and unhappy. Her wifely and anxiety goads her to inquire into his sadness. But in doing so, she punctures Morel's illusions. She asks him to stop his work and talk to her. She tells him that pupils agree with his view, but they do just the opposite of what he says. On Sunday, pupils come to the parsonage only to be refreshed by hearing him preach. This helps them to work harder and to earn more money. Men love to hear him. Women like to look at him. This is the reason that they come to hear Morel's sermons. In the end, Candida says, pupils do not come to the parsonage to hear the gospel. They come because they are in love with his five manner of preaching. Morel does not preach to propagate the gospel. He preaches because he gets an opportunity of addressing people in his excellent manner of preaching. When Morel hears this, he is not only shocked but also disillusioned. Quite ignorant that Marchbanks has told Morel about his love for her, Candida declares her fondness for the poet. She calls Eugene a wonderful boy. She has grown fonder and fonder of him. He is ready to fall madly in love with her, but he has not the least suspicion of it himself. If he marries a good woman, he will know this thing, and if he marries a bad woman, he will not forgive Candida. He will not forgive her because she did not teach him what love is. As such, Candida thinks that she is duty bound to teach Eugene what love is. But her fidelity to her husband does not allow her to fall in love with Eugene. Had she not loved Morel, she would have given her goodness and purity to Eugene as willingly as she would give her soul to a beggar dying of cold. She believes one of these is saving other man's soul. Morel hears the long speech of his wife. He becomes bewildered. True, rude is the shock he receives. The situation becomes tense and is relieved by the coming of Burgess and Marchbanks. Too great is the mental agony of Morel. He is deadly white. Burgess asks him what the matter is. Morel replies that perhaps Candida is mad. She is not able to understand Morel's mental agitation. She therefore says that Morel is simply disturbed because she thinks differently from him. Morel's mental agony is clear like daylight to Eugene. On seeing him, Eugene feels pained like a man seeing a tragedy. He therefore tells Candida that she should not make Morel suffer on his account. Candida does not admit this thing. She goes to him and asks him to stop work. This he refuses to do. Lexi returns from his round. He informs all those present in the drawing room that Morel has cancelled his engagement to speak for the Guild of St. Matthew. Burgess declares that Morel has given up an engagement for the first time in his life. It is then that Candida realizes that there is something wrong with Morel. She asks him why he has done so. In reply, he says that he is not a machine to be used for others' pleasure. Like all men, he wants to have one eight at home with his wife and friends. It now becomes quite clear to Candida that the engagement has been cancelled due to her. She expresses her regret. She says that Morel's conscience will hold him guilty if he does not go. Candida proposes that all of them will go with him if he decides to go. To this, Morel agrees. He calls Proserpine, who had not returned to the drawing room after the outburst of her feelings. He asks her to telegraph to the Guild of St. Matthew that he is coming. Candida is still doubtful about him. Burgess does not want to go. Morel promises to introduce him to the chairman, who is a member of the Works Committee of the Country's Council. This can help Burgess in getting a contract, so he at once agrees to go. Morel does not allow Candida and Eugene to accompany him. He asks his wife to celebrate with Eugene her return home. He leaves Eugene to her custody. He tells her that he is no more afraid of Burgess. Candida's protests go in vain. She fails to understand the mystery why Morel does not want to take her and Eugene with him. Marchbanks admires Morel's bravery. द्वितीय अंक का हिंदी सारांश. समय उसी दिन अर्थात 3 या 4 अक्टूबर की दोपहर. दृश्य स्थान संत डोमिनिक पुरोहिताश्रम की बैठक. यूजीन मार्चबैंक्स बैठक में अकेला है. उसके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वह यह देखता है कि टाइपराइटर कैसे काम करता है. किसी के आने की आवाज़ सुनकर वह खिड़की पर चला जाता है. वहां वह दिखावा करता है जैसे बाहर देख रहा हो. अंदर आने वाली स्त्री प्रोसरपाइन है. वह बैठकर टाइप आरंभ करती है. वह देखती है कि मशीन में स्पेसिंग बदल गई है. प्रोसरपाइन मार्चबैंक्स को टाइप राइटर छेड़ने के लिए दोषी ठहराती है. वह इसे स्वीकार कर माफ़ी मांगता है. प्रोसरपाइन जानना चाहती है कि क्या वह कोई प्रेम पत्र टाइप कर रहा था. इस तरह प्रेम वार्ता शुरू होती है. मार्चबैंक्स का विचार है कि चतुर व्यक्ति प्रेम से दूर रहते हैं. प्रोसरपाइन ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है. वह कहती है कि वह किसी से प्रेम नहीं करती है. वह उससे इस विषय पर चर्चा करने के लिए मना करती है. मार्चबैंक्स के अनुसार प्रोसरपाइन का कोई प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि वह शर्मिली है. उसके अनुसार संसार में इतनी कम प्रेम संबंध शर्मिलेपन के कारण ही है. शर्मिलापन प्रेमियों के बीच की बाधा है. प्रेमी अपना प्यार जताने में शर्माते हैं. मार्चबैंक्स स्वयं ही इसका अपवाद नहीं है. जब वह प्रेम याचना करना चाहता है तो उसे गूंगा बना देती है. अगर वह कुछ कहता है तो वह बिना अर्थ के तथा बकवास होता है. वह कहता है संसार में सारा प्यार बोलने से रुका हुआ है. वह इसलिए नहीं हिम्मत कर पाता क्योंकि वह शर्मिला है. इस सब को सुनने पर प्रोसरपाइन कहती है कि क्रूर व्यक्ति शर्मिले नहीं होते हैं. उत्तर में मार्चबैंक्स कहता है कि क्रूर लोगों के मन में कोई प्रेम नहीं होता, इसलिए उन्हें शर्म भी नहीं होती. प्रोसरपाइन प्यार के विषय में और ज़्यादा बातें करना नहीं चाहती, इसीलिए वह मार्चबैंक्स से निवेदन करती है कि वह अन्य विषयों पर बातचीत करे. परंतु मार्चबैंक्स प्यार के विषय में बोलने से रुक नहीं सकता. वह ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका हृदय प्यार पाने के लिए रो रहा है. प्रोसरपाइन ये सुन लेती है. उसकी प्रेम की भावनाएं भी उद्वेलित हो उठती हैं. वह कवि को अपने प्रेम के विषय में बताना चाहती है, पर वह उसे सतर्क करती है कि वह ये बातें किसी और को न बताए. इससे मार्चबैंक्स यह समझता है कि वह मिस्टर मील अर्थात लैक्सी से प्रेम करती है. प्रोसरपाइन इससे इनकार करते हुए कहती है कि वह मील की अपेक्षा मार्चबैंक्स को स्वीकार करेगी. मार्चबैंक्स उससे इस बारे में सोचने के लिए मना करता है. वह चाहती है कि यदि यूजीन मॉरल से बात करे तो वह पाएगा कि पादरी मॉरल उससे भी श्रेष्ठ है. इससे मार्चबैंक्स के मन को आघात लगता है. खिन्नता के कारण वह अपने हाथों से अपना मुंह ढक लेता है. बर्गेस आता है. प्रोसरपाइन और मार्चबैंक्स को सूचित करता है कि मॉरल भोजन कक्ष में एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कर रहा है. फिर वह घुमा फिराकर यह भी कह देता है कि मार्चबैंक्स प्रोसरपाइन से अपने तथा उसके प्रति प्यार के विषय में बातचीत कर रहा था. इससे प्रोसरपाइन क्रोधित हो जाती है. वह उसे बूढ़ा मूर्ख कहकर संबोधित करती है. बर्गेस को बुरा लगता है. वह निश्चय करता है कि मॉरल से उसकी शिकायत करेगा. मार्चबैंक्स बात को साफ करने का तथा बर्गेस को शांत करने का प्रयत्न करता है. इतने में प्रोसरपाइन के लिए घंटी बजती है. वह डाइनिंग रूम में मॉरल से मिलने जाती है. बर्गेस और मार्चबैंक्स ड्राइंग रूम में अकेले रह जाते हैं। बर्गेस उसे बताता है कि मॉरल अपने अजीब विचारों के कारण ही पागल कहलाता है। कुछ समय पहले और बाद तक बर्गेस ऐसा ही समझता रहा, अब उसने अपना मत बदल लिया है। वह तर्क देता है कि वह मॉरल को पागल क्यों समझता है। मॉरल ने उसे मूर्ख और दुष्ट कहा था, पर इसके बाद उसने बर्गेस के साथ हाथ मिलाया। ऐसा कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए बर्गेस उसे पागल समझता है। मॉरल आता है, बर्गेस उससे प्रोसरपाइन की शिकायत करता है। वह उसे बताता है कि प्रोसरपाइन ने उसे बूढ़ा मूर्ख कहा है। मॉरल इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वह बोला, प्रोसरपाइन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत स्पष्टवादी है। फिर वह खूब हंसता है। वह बर्गेस को सलाह देता है कि वह प्रोसरपाइन की बातों का बुरा न माने। बर्गेस अब पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि मॉरल पागल है। वह मार्चबैंक्स से मॉरल के व्यवहार व हाव भाव को देखने के लिए कहता है। बर्गेस सायंकाल के भोजन का इंतजार करता है, इसलिए वह मॉरल से समय गुजारने के लिए एक अच्छी किताब मांगता है। मॉरल को पता है कि बर्गेस ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए वह उसे तस्वीरों वाली पत्रिका दे देता। बर्गेस उसे ले जाकर अग्नि पार्श्व में चला जाता है और एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगता है। मॉरल मार्चबैंक्स को बताता है कि कैंडिडा शीघ्र ही उसका मनोरंजन करने के लिए आएगी। इस समय वह लैंपों में पैराफिन तेल डालने में व्यस्त है। मार्चबैंक्स को दुख होता है कि कैंडिडा चाकरी के कितने कठिन व अरुचिकर काम करती है। उसके सुंदर हाथ भी गंदे हो जाते हैं। वह लैंप भरने के लिए स्वयं जाना चाहता है, पर मॉरल उसे रोकता है। मार्चबैंक्स से जानना चाहता है कि मॉरल घर का छोटा मोटा काम करने के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेता। इसके उत्तर में मॉरल कहता है कि उसके पिता ने कितने नौकर रखे हुए हैं। मार्चबैंक्स यह नहीं जानता, इसलिए वह मॉरल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। वह मॉरल की आलोचना करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से अत्यधिक काम लेता है। वह आगे कहता है कि जब कैंडिडा के हाथ पैराफिन तेल से गंदे होते रहते हैं, मॉरल उसकी मदद करने के बजाय अपने प्रवचन देने में व्यस्त रहता है। कैंडिडा लैंप लेकर आती है। वह लैंपों का सारा काम यूजीन मार्चबैंक्स को देना चाहेगी यदि वह उनके साथ रहे। मार्चबैंक्स इस शर्त पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है कि कैंडिडा उसे अपना नौकर चाकर वाला सारा काम दे दे। कैंडिडा उसके प्रस्ताव की प्रशंसा करती है और सबसे पहले लैंपों का काम उसके सुपुर्द कर देती है। कैंडिडा मॉरल को उसका पोछे वाला ब्रश खराब कर देने के लिए दोषी ठहराती है। मार्चबैंक्स यह सोच कर ही सहम जाता है कि कैंडिडा को पूरा फर्श साफ करना पड़ेगा। वह दुख से चीख उठता है। कैंडिडा उसे पूछती है कि क्या वह बीमार है। इसके उत्तर में वह कहता है कि वह भयभीत हो गया था। बर्गेस भी उस कमरे में उपस्थित है। उसे आश्चर्य होता है कि मार्चबैंक्स इस उम्र में क्यों भयभीत होता है। कैंडिडा उसको संतुष्ट करते हुए कहती है कि काव्य भय है। बर्गेस कुछ समझ नहीं पाता। कैंडिडा यूजीन को शांत करती है। वह उसे कहती है कि वह बेवजह परेशान न हो क्योंकि वह उसी ब्रश से काम करेगी। वह प्यार से उसे कहती है कि अगर वह ज़्यादा ही परेशान है तो उसे नया अच्छा ब्रश भेंट कर दे जिसकी मूठ में सीप व हाथी दांत का काम किया गया हो। यह सुनकर यूजीन एकदम काव्य भाषा पर आ जाता है और सच्चा व पूरा प्यार पाने की अपनी चाह को दोहराता है। वह कहता है कि ब्रश के बजाय वह कैंडिडा को एक छोटी नाव भेंट करेगा जिसमें वे दोनों सैर करते हुए संसार से दूर चले जाएंगे। वे ऐसी जगह जाएंगे जहाँ फर्श संगमरमर के बने हों, जो सूर्य की चमक से ही साफ हो जाएं, या फिर वह उसे एक रथ भेंट में दे देगा। वह रथ उन्हें आकाश में ले जाएगा जहाँ लैंप का काम तारे ही कर देते हैं और उन्हें पैराफिन तेल से हर रोज भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मॉरल मार्चबैंक्स के उद्गारों को पसंद नहीं करता। वह कहता है कि मार्चबैंक्स ऐसी जगह जाना चाहता है जहां करने के लिए कुछ भी नहीं है और व्यक्ति आलसी स्वार्थी और बेकार होकर पड़ा रहे। मार्चबैंक्स ने उसके कथन को खंडित नहीं किया। वह कहता है कि आलसी स्वार्थी और बेकार होना ही तो सुंदर स्वतंत्र और प्रसन्न होना है। हर व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए ही चाहता है। मार्चबैंक्स कोई अपवाद नहीं है, यह उसके जीवन का आदर्श है। वह मॉरल की उसके आदर्श के लिए आलोचना करता है जो कि उसको उपदेशक और उसकी पत्नी को छोटे गंदे कामों का चाकर बना देते हैं। वह समझता है कि मॉरल का जीवन के बारे में विचार असत्य और केवल संघ सैद्धांतिक है। समाजवाद के द्वारा वह समानता की शिक्षा देता है परंतु अपनी पत्नी को समानता प्रदान नहीं करता। मार्चबैंक्स की ये सारी बातें मॉरल को क्रोधित कर देती हैं। उसके मन में मार्चबैंक्स के लिए कोई आदर नहीं है, परंतु जब कवि स्पष्ट और सही रूप में अपने जीवन के आदर्शों की आलोचना करता है तो मॉरल उसे भयभीत होने लगता है। प्रोसरपाइन आती है तथा मॉरल को गिल्ड ऑफ सेंट मैथ्यू की ओर से आया हुआ एक जवाबी तार पकड़ाती है। इसमें मॉरल से एक भाषण देने की प्रार्थना की है। मॉरल उत्तर देता है कि वह नहीं आ सकता। प्रोसरपाइन सूचना देती है कि प्याज आ गई है। यह सुनने पर कैंडिडा घर के अंदर चली जाती है। प्याज काटने के लिए वह कवि को अपनी सहायता के लिए साथ ले जाती है। बर्गेस को अपनी पुत्री का व्यवहार पसंद नहीं आता। वह कहता है कि उसको मार्चबैंक्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसने सभ्य व्यवहार की सीमाओं का उल्लंघन किया है। मॉरल कोई उत्तर नहीं देता, वह चुप रहता है। मॉरल तार का जवाब उस लड़के को देने चला जाता है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर पाइन और बर्गेस अकेले रह जाते हैं। वह उसको बताती है कि मार्चबैंक्स पागल है। यह सुनने पर बर्गेस यह सोचने लगता है कि वह स्वयं भी पागल है। उसने कवि को पहले ही यह बता दिया था कि मॉरल पागल है, इसलिए उसको मॉरल का घर एक अजीब स्थल लगता है। फिर वह बाग में धूम्रपान करने के लिए चला जाता है। मॉरल प्रोफेसर पाइन को मजाक के लिए चढ़ाना चाहता था, इसलिए वह उसे पूछता है कि उसने वृद्ध ससुर बर्गेस को क्यों चढ़ाया। भय के कारण उसका मुख लाल पड़ जाता है। अगले ही क्षण वह रोने लगती है। उसको सांत्वना देने के लिए मॉरल कहता है कि वह उसके कहे का बुरा न माने, पर उसके शब्द प्रोफेसर पाइन को सांत्वना देने में असफल रहे। वह जोर जोर से सुबकियां लेने लगी और फिर बैठक छोड़कर चली गई। कैंडिडा अपना गृह कार्य पूरा करके बैठक में आती है। मॉरल उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वह अपने लिखने में व्यस्त रहता है पर अपनी भावनाओं को कैंडिडा से छुपा नहीं पाता है। कैंडिडा पति को उदास और अप्रसन्न पाती है। पत्नी के नाते वह चिंतित होकर मॉरल से उसकी नाराजगी व उदासी का कारण पूछती है। ऐसा करके वह उसकी गलत फहमियों को दूर कर पाएगी। वह उसे लेखन कार्य बंद करके बात करने के लिए कहती है। वह उसे बताती है कि लोग उसके विचारों से सहमत हैं, परंतु जो वह कहता है लोग उसके विपरीत करते हैं। रविवार को लोग पादरी के पास सिर्फ उसके उपदेशों को सुनकर तरोताजा होने आते हैं। उससे उन्हें अधिक श्रम करने और अधिक धन कमाने में सहायता मिलती है। आदमी उसको सुनना पसंद करते हैं, औरतें स्त्रियां उसको देखना पसंद करती हैं। यही कारण है कि वे मॉरल के भाषण सुनने आते हैं। अंत में कैंडिडा कहती है, पुरोहिताश्रम में लोग धर्मोपदेश सुनने नहीं आते, कि वे केवल इसलिए आते हैं कि वे मॉरल की आकर्षक प्रवचन शैली पर मुग्ध हैं। वह प्रवचन इसलिए करता है कि उसके जनता को अपनी सर्वोत्तम भाषण कला में संबोधन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह सब सुनकर मॉरल को मानसिक आघात तो लगता है, वरन उसके भ्रम का निवारण हो जाता है। इस बात से अनजान कि यूजिन ने मॉरल को उसके प्रति अपने प्यार के बारे में बता दिया है, कैंडिडा कवि के प्रति अपनी चाह बताती है। वह यूजिन को एक आश्चर्यजनक लड़का बताती है। वह उसकी प्रशंसक बन गई है। वह पागलों की तरह से प्यार करने के लिए तत्पर है। उसे इसके बारे में जरा भी शक नहीं है। यदि वह एक अच्छी औरत से शादी करता है वह यह जान जाएगा, पर यदि वह एक बुरी औरत से शादी करता है तो वह कैंडिडा को कभी क्षमा नहीं करेगा। वह कैंडिडा को इसलिए माफ़ नहीं करेगा क्योंकि उसने उसको यह नहीं सिखाया कि प्यार क्या होता है। इसीलिए कैंडिडा सोचती है कि उसका कर्तव्य क्या है। वह यूजिन को सिखाए कि प्यार क्या है, परंतु उसकी अपने पति के प्रति ईमानदारी उसके यूजिन के साथ प्रेम करने की अनुमति नहीं देती। यदि उसने मॉरल को प्यार नहीं किया होता तो उसे अपनी अच्छाई और निर्मलता यूजिन को उसी तरह स्वेच्छा से दे देती जैसे अपनी शॉल ठंड से मरते हुए भिखारी को दे देती। उसका विश्वास है कि अच्छाई और निर्मलता से भी उच्च आदर्श है और उनमें से एक दूसरे की आत्मा की रक्षा करना है। मॉरल अपनी पत्नी का लंबा भाषण सुनकर वह भ्रमित हो जाता है। उसको भारी धक्का लगता है और उसकी मनस्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। मॉरल की मानसिक वेदना गहरी है। भय चिंता से उसका मुख मंडल सफ़ेद पड़ गया। बर्गेस उसे पूछता है कि यह सब क्या है। मॉरल उत्तर देता है कि शायद कैंडिडा पागल है। वह मॉरल की मानसिक व्याकुलता को समझ नहीं पा रही है। वह इसलिए कहती है कि मॉरल साधारणतः तनावपूर्ण रहता है क्योंकि वह उससे विपरीत सोचती है। मॉरल का मानसिक दुख यूजिन को दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। उसको देखने पर यूजिन उसी तरह दुखी हो जाता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी घातक दुर्घटना को देखने पर। वह इसलिए कैंडिडा को समझाता है कि उसको अपनी ओर से मॉरल को इस तरह दुख नहीं देना चाहिए। कैंडिडा इस बात को नहीं मानती। वह मॉरल के पास जाकर उसे कार्य बंद करने को कहती है। मॉरल ऐसा करने से इनकार कर देता है। लैक्सी भी वापस आ जाता है। वह बैठक में विराजे सभी लोगों को सूचित करता है कि मॉरल ने गिल्ड ऑफ सेंट मैथ्यू में प्रवचन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। बर्गेस घोषणा करता है कि मॉरल ने अपने जीवन में पहली बार एक कार्यक्रम निरस्त किया है। तब कैंडिडा समझती है कि मॉरल के साथ कुछ गलत हो रहा है। वह उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह जवाब देता है कि वह एक मशीन नहीं है जो दूसरों की खुशियों के लिए प्रयोग की जाए। अन्य व्यक्तियों की तरह वह भी एक रात अपने घर में अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ बिताना चाहता है। अब कैंडिडा को स्पष्ट हो जाता है कि प्रवचन के लिए बुलावा उसी की वजह से निरस्त किया गया है। वह उसके लिए अपना खेद प्रकट करती है। वह कहती है कि मॉरल की आत्मा उसको दोषी ठहराएगी यदि वह प्रवचन के लिए नहीं जाता। कैंडिडा यह प्रस्ताव रखती है कि उसके साथ सभी जाएंगे यदि वह जाने का फैसला करता है। इसके लिए मॉरल राजी हो जाता है। वह प्रोसरपाइन को बुलाता है जो अपनी भावनाओं को प्रकट करके रो धोकर बाहर चली गई थी और अभी तक बैठक में वापस नहीं आई थी। मॉरल उससे गिल्ड ऑफ सेंट मैथ्यू को तार से सूचित करने को कहता है कि वह प्रवचन के लिए आएगा, पर मॉरल के विषय में कैंडिडा अभी भी शंकित मना है। बर्गेस जाना नहीं चाहता। फिर मॉरल उससे वायदा करता है कि वह उसे अध्यक्ष से मिलवाएगा जो कंट्री काउंसिल की वर्क्स कमेटी का सदस्य है। यह मुलाकात बर्गेस के लिए ठेका प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी, अतः वह जाने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। मॉरल कैंडिडा व यूजिन को अपने साथ जाने की अनुमति नहीं देता। वह कैंडिडा से कहता है कि आज घर लौटने के अवसर पर वह यूजिन के साथ आमोद प्रमोद मनाए। वह कैंडिडा को यह भी बताता है कि यूजिन उसकी रक्षा के लिए घर पर रहेगा तथा वह मॉरल अब बर्गेस से नहीं डरता है। कैंडिडा मॉरल से उसे अपने साथ न ले जाने पर आपत्ति उठाती है, पर मॉरल इसकी अनसुनी कर देता है। कैंडिडा मॉरल का निश्चय समझने में असफल रहती है। यूजिन मॉरल की दृढ़ निश्चयता की प्रशंसा करता है। अब एक्ट नंबर 3। टाइम पास्ट 10 इन द नाइट द सेम डे दैट इज अक्टूबर 3rd or 4th। Place the same room, that is the drawing room of Saint Dominic's personage. Morel has gone to the lecture. He has left behind Candida and Marchbanks. She is unable to understand why Morel has done so. Marchbanks knows this thing and is faced with a dilemma. Morel has placed him in honor by leaving him with Candida. Marchbanks and Candida are sitting by the fire. He has the occasion to satisfy his lust. But he wants to avoid the temptation. In order to avoid the temptation, he starts reading poems. In doing so, he has one motive. Through the poems, he wants Candida to understand the true feelings of his heart. But Candida is absorbed in her own thoughts. She is thinking why she has been left like that by Morel. She has the poker in her hand. She is continuously looking at it. While reading a poem, Marchbanks is struck by a novel idea. He stops his recitation. He asks Candida how she likes this idea. She is pained to find that Candida is not paying any attention to him. She is busy in continuously looking at the poker. She tells him that perhaps the poker has hypnotized her. She asks him to stop reciting poems and to talk to her. This he does not want to do. In his talks, he might declare his love for Candida. In order to avoid talking to her, he wants to go to the park, but it is closed. He lies on the hearth rug with head across Candida's knees. During his conversation with Candida, Marchbanks gets excited and passionate. Candida understands this thing, so she puts him on his honor and truth. This brings about a change in Marchbanks. His passion disappears and spiritual love takes place. His love becomes platonic. He rises from the earthly plane to a nobler level. His joy lies in going on repeating the name of Candida. At this stage, he asks him, "Do you want anything more?" In reply, he says, "I have come into heaven where a want is unknown." At this time, Morel comes in. He has spoken splendidly. His coming does not disturb Candida and Marchbanks because they are free from guilt. Candida goes inside the house to make Morel's supper ready. Morel asks Marchbanks how he has behaved with Candida during his absence. Marchbanks replies that he has behaved honorably. Morel again asks him if he has kept his oath of not expressing his love to Candida. Marchbanks said that he did so for a long time by reading poems, but after that he approached the gate of heaven, that is Candida, and a little later entered it. This makes Morel very angry. He tells Marchbanks that the poet should not have injured his feelings. Marchbanks begins to speak in poetic language. This confirms Morel in his doubts. Marchbanks tells him that Candida became an angel to him. He says that Morel is not worthy to live in the same world with her. He says that he does not want to talk to Morel, the moralist and preacher. He wants to talk to Morel, the man whom Candida loves. He tells Morel that Candida has divine qualities which have made her forgive both of them. Her divine qualities make her love with them without caring for their follies and vanities. He admits that though he failed to get earthly love from Candida, he gets from her divine love. As an angel, she bestowed whatever he wanted. Morel is unable to understand the poetic language of Marchbanks, so Morel begins to entertain doubts. He feels sad at his lot. Contrary to him, Marchbanks feels very happy, as he has no other desire but to see Candida happy. He tells Morel that both of them are unworthy of Candida's divine love. Hence, he suggests that both of them should give up Candida and go in search of a fit and perfect lover for Candida. Morel says that if Candida leaves her, who will protect her and her children? Marchbanks replies that she is not worried about these questions. He then says that he will be the man to protect her and children. He then makes another suggestion. He says that Candida should be called to choose between him and Morel. While the above hot discussion was going on between Morel and Marchbanks, Candida comes. She asks Eugene what they had been discussing. He replies that they are having a preaching match in which Morel was at his worst. Candida finds her husband greatly disturbed, so she bitterly rebukes Eugene for troubling him. Eugene becomes terrified on seeing Candida angry. He wants to leave, but Candida stops him. Eugene blames Morel for beginning the quarrel. Morel holds Eugene responsible for it. As the situation has become very tense, the dramatist relieves it by diverting our attention to the other characters of the play. Burgess, Lexi, and Proserpine, who had gone with Morel to the lecture return. Lexi congratulates Morel for his speech. It has broken the records of all his previous speeches. Burgess confirms Lexi's opinion. Lexi informs Morel that Burgess gave all of them a very splendid supper at the Belgrave Hotel. There, champagne was served. The chairman of the Guild of St. Matthew was also invited by Burgess. Morel is very well able to understand its reason. Proserpine leaves for her home. As she is drunk, Morel asks Lexi to go and look after her. Burgess asks Marchbanks to go with him some distance, but Candida stops him. When Burgess leaves, Morel follows him. Candida stops him too. Marchbanks expects a quarrel with Candida, so he asks Morel to be with him. To this, Morel does not agree. Candida asks Marchbanks if he is sorry for annoying Morel. Marchbanks expresses his regret. As Candida wants to talk to her husband about Marchbanks, she asks the poet to go to bed. But he stays because he wants to hear their talk. Then he asks Morel to tell Candida what he wants to say. Marchbanks' words make Candida suspicious. She asks Morel to speak out what he wants to say. Morel replies that he has nothing to tell her except that she is her greatest treasure on earth, if she is really his. This obviously means that he doubts Candida's love for him. Naturally enough, Candida, who is true to him, becomes offended. She says that Marchbanks can say the same thing which has been said by Morel. On being further inquired what the matter is, Morel opens his heart to her. He says that Eugene has declared that she is in love with Eugene. Marchbanks contradicts him. He says that he did not say this thing. He only said that he is in love with her. Morel then says that Eugene told him that Candida disliked him. Marchbanks retorts by saying he did not say so. He simply said that David's wife despised her husband. Morel then blamed Candida. He says that the statements of Eugene and Candida were practically the same. The former said that his wife despised him. The latter said that Eugene understood everything while Morel understood nothing. Candida tells him not to mind what Eugene said as a child, and she is in jest. Morel finally tells Candida that Eugene claims her. He therefore wants that she should choose between Marchbanks and himself. This annoys Candida. She thinks she is an article which must belong either to one of them. Greatly pained, she says to them, "My lords and masters, what have you to offer for my choice? I am up for auction. Candida asks Morel what is his bid for her. In reply, he says, "I have nothing to offer you but my strength for your defense, my honesty for your surety, my ability and position for your livelihood, and my authority and position for your dignity." Candida then wants to know Marchbank's offer. His offer is just the opposite of Morel's. Instead of offering protection to Candida, he wants her protection for himself. He says, "My weakness, my desolation, my heart's need." Candida thinks over the two offers. Then she says, "I gave myself to the weaker of the two." Marchbanks understands that her choice has fallen on Morel, whose life will become miserable without her. Morel thinks that she has chosen Marchbanks because he is physically weaker. Candida gives a reason for not choosing Marchbanks. She says that nobody has ever cared about him. In comparison to him, his brothers and sisters were liked by his parents. His father is starving him so that he may go to study at Oxford. He has no comfort or welcome or refuge. He is lonely, disliked, and misunderstood. To such a man, it will make no difference whether Candida chooses him or not. His life has always been lonely. As such as he will be able to face it, he has become accustomed to it. Candida then tells the reasons why she has chosen Morel. She says that Morel was the dearest child of his parents. He is strong and clever. She is his mother. His three sisters, his wife and mother of his children, he cannot prepare his sermons. If she does not stop tradesmen from wearing him, he is free from worries due to her. Such a man obviously needs Candida more than Marchbanks. In her absence, Morel's life will be full of unhappiness, a thing which he has never known and experienced. On knowing Candida's decision, Marchbanks prepares to leave. He says to Morel, "I no longer desire happiness. Life is nobler than that. Père Saint James, one give you my happiness with both hands." Candida asks him to make a little poem and to repeat whenever he thinks of her. In reply, Marchbanks says, "But I have a better secret than that in my heart. Let me go now." As he goes towards the door, Candida approaches him to kiss him. Understanding her purpose, Marchbanks falls on his knees so Candida can kiss his forehead only. Then he goes out and disappears in the darkness of the night. Morel and Candida embrace each other, but they do not know the secret in the poet's heart. Candida thinks that the poet still loves her. She does not know that he has understood the hollowness of the world and realized its true nature. Tritiya Ankh ka Hindi Saransh. रात के 10 बज चुके थे उसी दिन अक्टूबर 3 या 4। स्थान था संत डोमिनिक पुरोहिताश्रम की बैठक। दृश्य: मोरल प्रवचन देने के लिए चला गया था। वह कैंडिडा और यूजीन मार्चबैंक्स को घर पर छोड़ कर गया था। वह नहीं समझ पा रहा है कि मोरल ने ऐसा क्यों किया। मार्चबैंक्स भी यह जानता है और वह असमंजस में पड़ गया है। मोरल ने कैंडिडा को उसके पास छोड़कर उसे सम्मानित किया है। मार्चबैंक्स और कैंडिडा अग्नि पार्श्व में बैठे हुए हैं। मार्चबैंक्स को अपनी वासना को संतुष्ट कर सकने का अच्छा अवसर मिल गया है, पर वह इस प्रलोभन से बचना चाहता है। अपनी वासना को दूर करने के लिए वह कविता पढ़ने लगता है। इसके पीछे उसका प्रयोजन है कि कविताओं के माध्यम से ही कैंडिडा उसकी इच्छाओं को समझ ले। परंतु कैंडिडा अपने विचारों में ही खोई हुई है। वह सोच रही है कि मोरल ने उसको घर पर स्थिति में छोड़ दिया है। उसके हाथ में पाकर है जिसे वह एक टक देखी जा रही है। कविता पढ़ते पढ़ते मार्चबैंक्स के दिमाग में एक विचार आता है। वह अपना कविता पाठ रोककर कैंडिडा से पूछता है कि उसको कविता का भाव कैसा लगा। उसको यह देखकर बहुत दुख है कि कैंडिडा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही और केवल पॉकर को देखने में ही व्यस्त है। वह उसको बताती है कि पॉकर ने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया है। कविता पाठ बंद करके वह यूजीन से उससे बातचीत करने के लिए कहती है, पर यूजीन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि बातचीत में वह कैंडिडा के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। कैंडिडा से बातचीत को टालने के लिए वह पार्क में जाना चाहता है, पर रात्रि में इस समय पार्क बंद है। वह अग्नि पार्श्व के गलीचे पर लेट जाता है और कैंडिडा के घुटनों पर अपना सिर टिका लेता है। कैंडिडा के साथ बातचीत के दौरान मार्चबैंक्स कामुक हो गया। कैंडिडा इस बात को समझती है, इसलिए वह उसे ईमानदारी व सच्चाई का वास्ता देती है। इसे मार्चबैंक्स में बदलाव आता है और उसकी कामुकता आध्यात्मिक प्रेम का रूप धारण कर लेती है। वह पृथ्वी के धरातल से एक उत्कृष्ट स्तर पर उठ जाता है। उसको कैंडिडा का नाम बार बार पुकारने में आनंद आता है। उस क्षण में कैंडिडा उससे पूछती है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? इसके उत्तर में वह कहता है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, जहाँ चाह नाम की चीज को कोई भी नहीं जानता। इसी समय मोरल आ जाता है। उसका आना कैंडिडा और मार्चबैंक्स को परेशान नहीं करता है, क्योंकि वे निर्दोष हैं और उनको कोई ग्लानि नहीं है। कैंडिडा मोरल का रात्रि भोज तैयार करने के लिए अंदर आती है। मोरल मार्चबैंक्स से पूछता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसने कैंडिडा के साथ कैसा व्यवहार किया। मार्चबैंक्स का उत्तर था कि उसने सम्मानपूर्ण बर्ताव किया। मोरल फिर कहता है कि क्या उसने अपनी कसम का पालन किया। मार्चबैंक्स कहता है कि काफ़ी समय तक वह कविता पाठ करता रहा, पर कुछ समय बाद वह स्वर्ग के द्वार के पास पहुंच गया और फिर उसमें प्रवेश कर गया। यह सुनते ही मोरल बहुत क्रोधित हो उठता है। वह मार्चबैंक्स से कहता है कि कवि को उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मार्चबैंक्स काव्य शैली में बोलने लगता है। यह मोरल की आशंकाओं को निश्चित कर देता है। मार्चबैंक्स उसको बताता है कि कैंडिडा उसके लिए देवी स्वरूप है और मोरल उसके योग्य नहीं है। वह नैतिकता के उपदेशक वह धर्म के प्रचारक मोरल से बात नहीं करना चाहता। वह तो उस मोरल से बातचीत करना चाहता है जिसे कैंडिडा प्रेम करती है। कैंडिडा में कुछ दिव्य विशेषताएं हैं जिनकी वजह से वह उन दोनों को माफ कर चुकी है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर चुकी है। वह कैंडिडा से पृथ्वी का कामुक प्यार तो नहीं पा सका, परंतु उसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई है। एक देवी के रूप में उसने सब कुछ दे दिया जिसकी उसे चाह थी। मार्चबैंक्स की काव्य भाषा को मोरल नहीं समझ पाया, इसीलिए मोरल के मन में शंका व दुख बने रहे। इसके विपरीत मार्चबैंक्स बहुत खुश है, क्योंकि उसकी इच्छा कैंडिडा को सुखी व खुश देखने की है। वह मोरल से कहता है कि उन दोनों में से कोई भी कैंडिडा के दिव्य प्रेम को पाने के योग्य नहीं है। इसीलिए उसका सुझाव है कि उन दोनों को कैंडिडा का प्यार पाने की चाह को छोड़ देना चाहिए और उन्हें उसके लिए उपयुक्त व गुणवान प्रेमी की तलाश करनी चाहिए। मोरल कहता है कि अगर वह कैंडिडा को छोड़ देगा तो उसकी और उसके बच्चों की कौन देखभाल करेगा। मार्चबैंक्स उत्तर देता है, उसको इन सब बातों की चिंता नहीं है। फिर वह कहता है कि वह उसकी और उसके बच्चों की उचित देखभाल कर सकेगा। वह एक और सुझाव देता है कि उन्हें कैंडिडा को बुलाना चाहिए और उसे पूरी छूट दे देनी चाहिए कि वह उन दोनों में से जिसको भी ठीक समझे उसका चुनाव कर ले। बातचीत का यह दौर जब मोरल और यूजिन में चल रहा था, कैंडिडा आ जाती है। वह यूजिन से पूछती है कि वे किस विषय में बात कर रहे थे। वह बताता है कि वे शास्त्रार्थ कर रहे थे जिसमें मोरल मात खा रहा था। कैंडिडा अपने पति को चिंतित देखती है। वह यूजिन को डांटती है कि वह उसके पति को परेशान कर रहा है। यूजिन कैंडिडा का गुस्सा देखकर डर जाता है। वह वहां से जाना चाहता है, पर कैंडिडा उसे रोक लेती है। यूजिन मोरल को लड़ाई शुरू करने के लिए दोषी ठहराता है। मोरल यूजिन को दोषी ठहराता है। क्योंकि वातावरण बड़ा तनावपूर्ण हो गया है, इसलिए नाटककार इस तनाव को कम करने के लिए हमारा ध्यान नाटक के अन्य पात्रों की ओर ले जाता है। बर्गेस लैक्सी और प्रोसरपाइन, जो मोरल के साथ लेक्चर में गए थे, वापस आ जाते हैं। लैक्सी मोरल को उसके भाषण पर बधाई देता है, क्योंकि आज उसने पहले भाषणों के सभी कीर्तिमान तोड़ दिए थे। बर्गेस भी लैक्सी की बात की पुष्टि करता है। लैक्सी मोरल को बताता है कि बर्गेस ने उन्हें होटल बेलग्रेव में शैंपेन पिलाई तथा बहुत बढ़िया खाना खिलाया। बर्गेस ने संत मैथ्यू गिल्ड के चेयरमैन को भी निमंत्रित किया था। मोरल अच्छी प्रकार से समझता था कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रोसरपाइन अपने घर चली जाती है क्योंकि उसने शराब पी ली थी, इसलिए मोरल लैक्सी से कहता है कि वह जाए और उसकी देखभाल करे। बर्गेस यूजिन से उसके साथ कुछ दूर चलने के लिए कहता है, परंतु कैंडिडा उसे रोक देती है। जब बर्गेस जाता है तो मोरल भी उसके पीछे जाता है। कैंडिडा उसको भी रोकती है। मार्चबैंक्स को कैंडिडा के साथ लड़ाई का आभास होता है, इसलिए वह मोरल को अपने साथ रहने के लिए कहता है। मोरल इस पर सहमत नहीं होता। कैंडिडा मार्चबैंक्स से पूछती है कि उसको दुख है कि उसने मोरल को गुस्सा कर दिया। मार्चबैंक्स दुख व्यक्त करता है। कैंडिडा अपने पति से मार्चबैंक्स के बारे में बात करना चाहती है, इसलिए उस कवि से कहती है कि वह अपने पलंग पर जाए, पर वह रुक जाता है क्योंकि वह उनकी बातचीत सुनना चाहता है। फिर वह मोरल से कहता है कि वह कैंडिडा को बता दे कि वह क्या कहना चाहता है। मार्चबैंक्स के शब्द कैंडिडा को शंकित कर देते हैं। वह मॉरल से कहती है कि वह स्वयं उसे बताए जो वह कहना चाहता है। मॉरल कहता है कि वह कैंडिडा से कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि वह उसके लिए इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान खजाना है अगर वह उसकी है तो। यह कथन दर्शाता है कि मॉरल को कैंडिडा के प्रेम पर संदेह है। कैंडिडा जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है ऐसा सुनकर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि मार्चबैंक्स भी वही बात कह सकता है जो मॉरल ने कही है। मॉरल से दोबारा पूछने पर क्या मामला है, मॉरल अपना दिल खोल देता है। वह कहता है कि यूजिन ने उसे बताया है कि कैंडिडा उससे यानी कि यूजिन से प्रेम करती है। मार्चबैंक्स बात को काटते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने उससे सिर्फ यही कहा है कि वह उससे प्यार करता है। मॉरल उससे कहता है कि यूजिन ने उसे बताया है कि कैंडिडा उसे पसंद नहीं करती है। मार्चबैंक्स फिर कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने सिर्फ यही कहा था कि डेविड की पत्नी अपने पति से घृणा करती थी। मॉरल ने फिर कैंडिडा को दोषी ठहराया। वह कहने लगा कि यूजिन और कैंडिडा ने एक सी बातें कही हैं। पहले यूजिन ने कहा कि मॉरल की पत्नी अपने पति को घृणा से देखती है। बाद वाले ने कहा यानी कैंडिडा ने कहा कि यूजिन तब सब समझ गया जबकि मॉरल कुछ नहीं समझा। कैंडिडा ने मॉरल से कहा कि उसे यूजिन की और उसकी मजाकिया बातों बचकानी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मॉरल अंत में कैंडिडा को बताता है कि यूजिन उस पर अपना हक जमाता है, इसीलिए वह चाहता है कि वह मार्चबैंक्स और उसमें से किसी एक को चुन ले। कैंडिडा गुस्सा हो जाती है। वह जोर देकर कहती है कि क्या वह कोई वस्तु है जो दोनों में से एक की ही हो सकती है। बहुत दुखी होकर वह कहती है, मेरे माए बाप और मालिक, तुम लोग मुझे खरीदने के लिए और क्या बोली लगा रहे हो, मेरी तो नीलामी हो रही है। कैंडिडा मॉरल से पूछती है वह उसको क्या देगा। मॉरल उत्तर में कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी निजी शक्ति, तुम्हारी निश्चितता के लिए मेरी ईमानदारी, तुम्हारे जीवन यापन के लिए मेरी क्षमता, तुम्हारे सम्मान के लिए मेरी पद स्थिति। कैंडिडा यूजिन से पूछती है वह उसे क्या दे सकता है। उसने उत्तर दिया कि जो कुछ मॉरल दे सकता है वह उसके विपरीत ही कुछ दे सकता है। कैंडिडा को वह सुरक्षा नहीं दे सकता। वह कहता है कि मैं कैंडिडा को अपनी दुर्बलता, अपनी उदासी, अपनी दिल की चाह ही दे सकता हूँ। कैंडिडा दोनों प्रस्तावों के बारे में सोचती है, फिर वह कहती है कि मैं अपने आप को दोनों में से जो कमजोर हूँ उसको सौंपती हूँ। मार्चबैंक समझ जाता है कि उसको मॉरल पसंद है क्योंकि कैंडिडा के बिना उसकी जिंदगी दयनीय हो जाएगी। मॉरल समझता है कि उसने मार्चबैंक्स को चुना है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर है। कैंडिडा मार्चबैंक्स को नापसंद करने के पीछे तर्क देती है। वह कहती है कि उसकी किसी ने भी परवाह नहीं की है। मार्चबैंक्स के माता पिता भी उसके भाई बहनों को पसंद करते थे। उसके पिता भी उसको दयनीय स्थिति में रख रहे हैं ताकि वह ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ सके। उसको कोई सुविधा नहीं है, वह अकेला है, लोग उसे नापसंद करते हैं और अधिकतर गलत समझते हैं। ऐसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडा उसका चुनाव करे या ना करे। उसका जीवन एकाकी रहा है और वह उसका आदि है और इसे सह भी सकता है। कैंडिडा फिर तर्क देती है कि क्यों उसने मॉरल को पसंद किया है। वह कहती है कि मॉरल अपने माता पिता का प्रिय पुत्र रहा, वह बुद्धिमान और शक्तिशाली है, वह उसकी माँ, तीन बहनें, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की माँ है। वह अपने उपदेश भी तैयार नहीं कर पाता। यदि वह व्यापारियों को उसे थकाने व तंग करने से नहीं रोके, वह उसकी मदद से सब चिंताओं से मुक्त रहता है। ऐसे इंसान को कैंडिडा की मार्चबैंक्स से ज़्यादा जरूरत है। उसके बिना मॉरल का जीवन बहुत दुखपूर्ण हो जाएगा, जिसका उसको न तो ज्ञान है और न ही अनुभव। कैंडिडा के निर्णय को सुनकर मार्चबैंक्स वहां से जाने की कोशिश करता है। वह मॉरल से कहता है कि मैं अब सुख की कामना नहीं करता, जीवन इससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। पार्सन जेम्स, मैं तुम्हें दोनों हाथों से अपनी खुशी देता हूँ। कैंडिडा उसे कहती है कि जब भी उसके बारे में सोचे तो वह कविता लिख ले और उसे दोहरा ले। उसके उत्तर में मार्चबैंक्स कहता है, मेरे हृदय में कुछ गुप्त है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वह दरवाजे के पास जाता है, कैंडिडा उसको चूमने के लिए जाती है। उसकी मन की बात समझते हुए मार्चबैंक्स उसके घुटनों पर गिर जाता है, जिसे कैंडिडा सिर्फ उसके माथे को चूम सके। फिर वह चला जाता है और रात के अंधेरे में खो जाता है। मॉरल और कैंडिडा एक दूसरे को प्यार करते हैं, परंतु उनको इस गुप्त रहस्य का पता नहीं चलता जो उस युवा कवि के हृदय में है। कैंडिडा सोचती समझती है वह कवि अभी भी उसे प्यार करता है। वह यह नहीं जानती है कि कवि ने इस संसार के खोखलेपन को समझ लिया है और उसकी प्रकृति को जान लिया है। धन्यवाद।